नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है। ऑड इवन सिस्टम एक हफ्ते के लिए लागू किया जाएगा। इसके तहत 13 नवंबर से 20 तक दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित संख्या वाली गाड़ियां ही सड़कों पर उतर सकेंगी। इसके अलावा दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई हाई लेवल मीटिंग की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश देने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनज़र स्कूलों को 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पीएफआई द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संगठन के रूप में अपने पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संगठन को पहले संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। पीएफआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान भी इस पर अपनी सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में पारित यूपीए ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन की अपील पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो देश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में छात्राओं के लिए उनकी संख्या के आधार पर शौचालयों के निर्माण को लेकर राष्ट्रीय आदर्श नियमावली बनाए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से उस नीति के बारे में सवाल किया जिसे उसने पूरे देश में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए बनाया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को सैनिटरी नैपकिन वितरण में एक रूपता लानी चाहिए। सुनवाई के दौरान केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि स्कूल जाने वाली महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटने के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया गया है और उसे हितधारकों को उनकी राय जानने के लिए भेजा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए रिश्वत के बदले संसद में प्रश्न पूछने से संबंधित आरोप के मामले पर लोकसभा की आचार समिति की बैठक मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे स्वीकारने के लिए अब 7 नवंबर से 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय के नोटिस में ये जानकारी दी गई है। समिति की बैठक स्थगित करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है। मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बैठक बुलाने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब अपनी सिफारिशें देगी। गत 2 नवंबर को हुई समिति की आखिरी बैठक में सदस्यों ने अपनी पार्टी के रुख के हिसाब से राय जाहिर की थी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार सुबह कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज में जितने महत्वपूर्ण काम किए हैं उसमें सबसे अहम भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली को सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये महीना त्योहारों का महीना है। इन त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7,000 रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में सोमवार को एक मिनी बस के सड़क से फिसलकर 300 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना कैंची मोड़ पर दोपहर करीब 11 बजे तब हुई जब कोटरंका से राजौरी जा रही इस मिनी बस का चालक एक तीक्ष्ण मोड़ के पास वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना के तत्काल बाद बचाव अभियान शुरू किया गया और 18 लोगों को बाहर निकालकर सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजौरी अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक महमूद एच बाजर ने बताया कि 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा गंभीर रूप से घायल मरीजों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।